हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दोस्तों, 150 करोड़। हमारे सबसे बड़े उद्योगपति सिद्धार्थ खुराना ने 150 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई है जो इस बोली को बीट कर सके? कोई है 150 करोड़ से आगे? लेकिन पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, पर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई भी आगे बोली लगाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। नीलामी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। होस्ट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हथौड़ा उठाया और ऊंची प्रभावशाली आवाज में बोली, तो देवियों और सज्जनों, हमें मिल चुके हैं 150 करोड़। 150 करोड़, पहली बार। हॉल में सन्नाटा। 150 करोड़, दूसरी बार। कैमरों की फ्लैश, लोगों की धड़कनें और मंच के बीचों बीच चमकता हुआ वो ब्लैक एम्पायर डायमंड नेकलेस, जिसकी कीमत पहले ही करोड़ों में आंकी जा चुकी थी, अब इतिहास रचने ही वाला था। होस्ट ने तीसरी बार बोलने के लिए होंठ खोले ही थे कि अचानक हॉल के पीछे से एक कड़क, गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, 170 करोड़। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने पूरे माहौल को जैसे बिजली का झटका दे दिया। भीड़ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। लोगों की गर्दनें एक साथ पीछे की ओर मुड़ी, फुसफुसाहटें अचानक रुक गई और फिर सबकी निगाहें ठहर गईं। ब्लैक डोर खुला और वहां खड़ी थी झलक। सिर से पैर तक ब्लैक परिधान में, स्ट्रेट कट पावर सूट, हाथ में ग्लव्स, आंखों पर काले सनग्लासेस। उसके कदमों में ऐसी ठहराव भरी दृढ़ता थी जैसे वो नीलामी में नहीं किसी युद्ध भूमि में उतरी हो। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड, पूरी फौजी अनुशासन में, चौड़े कंधे, सख्त चेहरे और पैनी निगाहें। उसकी एंट्री किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी, पर ये हकीकत थी। झलक ने बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ते हुए दोबारा कहा, 170 करोड़। इस बार उसकी आवाज और भी साफ और भी ठंडी थी। वो सीधा आकर सिद्धार्थ खुराना के ठीक बराबर वाली टेबल पर बैठ गई, ऐसे जैसे वो उसी जगह की हकदार हो। उसके बैठते ही पूरे हॉल में जैसे झुनझुनी सी फैल गई। सिद्धार्थ ने जैसे ही झलक को देखा, उसकी आंखें सचमुच फैल गईं। चेहरा सख्त, पर भीतर हैरानी साफ झलक रही थी। झलक, उसके होंठों से बेहद धीमे स्वर में निकला। आर्यन रायचंद ने कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए चश्मा उतार दिया। रणविजय खुराना की भौहें सिकुड़ गईं। दादी उर्वशी खुराना के चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं खिंच गईं। नैना ओबेरॉय की मुस्कान जैसे वहीं जम गई। आकांक्षा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उधर मंच पर खड़ी होस्ट भी एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसके चेहरे पर हल्की पेशेवर मुस्कान लौट आई। देवियों और सज्जनों, हमें मिल चुकी है नई बोली, 170 करोड़। हॉल में फिर तालियां गूंजी, पर इस बार तालियों में उत्साह से ज्यादा रोमांच था। स्पॉटलाइट अब नेकलेस पर नहीं, झलक पर टिक चुकी थी। ब्लैक डायमंड की चमक और झलक की मौजूदगी दोनों मिलकर आज की रात को और भी रहस्यमयी बना चुकी थे। अब ये सिर्फ नीलामी नहीं रही थी, ये सीधी टक्कर थी। और हर कोई समझ चुका था, आज की शाम का असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। और उस सपने को पूरा करने के लिए झलक किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। झलक के वहां आते ही अब नैना के तन बदन में आग लग गई थी। वहीं उर्वशी खुराना का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि उर्वशी को तो झलक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसके लाडले पोते सिद्धार्थ की शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा कि इस बारे में नीलामी को किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। लेकिन नैना तुरंत ही उठ खड़ी हुई और होस्ट को देखकर बोली, ये लड़की धोखेबाज है, ये लड़की यहाँ बैठने के लायक नहीं है, ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। जैसे ही नैना ने पूरी भीड़ के सामने इस तरह की बात बोली, सब लोग हैरानी से नैना ओबेरॉय को देखने लगे। तभी नैना गुस्से से झलक के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम यहाँ आकर क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें जरूर मेरे किसी अपोजिशन वाले ने यहाँ भेजा होगा हमारी आज की शाम को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी तरह का कोई मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस फंक्शन में आ भी सको, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर झूठे इल्जाम लगाने की? वहीं उर्वशी खुराना भी उठ खड़ी हुई और उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ये लड़की हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए आई है, ये हमें बदनाम करने आई है। हमने इस लड़की को क्या कुछ नहीं दिया, सम्मान और इज्जत दी, और ये लड़की है कि दो कौड़ी की खटिया चाल चल रही है। भाड़े के लोगों को बॉडीगार्ड बनाकर यहाँ ला रही है और पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। इस तरह जब छलक के बारे में बातें शुरू हुई तो होस्ट पूरी तरह से हैरान हो गई और सब लोगों की ओर देखने लगी। लेकिन जो लोग छलक पर इल्जाम लगा रहे थे वे कोई आम आदमी नहीं थे, सभी एक से बढ़कर एक बड़े नाम थे। आकांक्षा भी तुरंत उठ खड़ी हुई। इस बार आकांक्षा ने छलक के पहनावे और बॉडीगार्ड्स को देखकर पहले जैसा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अस्पताल की घटना से गुजर चुकी थी। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि छलक क्या करने की कोशिश कर रही है। उसे लगा कि छलक आज भी किसी तरह का नाटक रचने आई है। मेरी प्यारी सौतेली बहन, ये कैसा नाटक रचाया है तुमने, आकांक्षा ने ताना मारते हुए कहा। इस तरह की बातें वहां होने लगी तो माहौल पूरी तरह से कन्फ्यूज हो चुका था। नीलामी का काम जैसे रणनीति और बातों के जाल में उलझ गया था। होस्ट तुरंत सबको शांत करते हुए बोली, आप लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, प्लीज शांत हो जाइए, इस तरह अपनी मर्यादा को भंग मत कीजिए, यहाँ इस तरह का शोर शराबा नहीं कर सकते। सब अलग अलग तरीके से झलक को उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, लेकिन झलक शांत चेहरे के साथ वहीं बैठी हुई थी। वहीं सिद्धार्थ की नजरें पूरी तरह से झलक पर टिकी हुई थी। हालांकि उसने दिल ही दिल में अपने आप से ये वादा किया था कि वो झलक को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जब वो उसे दिल से निकाल चुका है तो उसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस तरह झलक का आकर उसके ठीक बराबर वाले टेबल पर बैठ जाना और उसके चेहरे पर वो अजीब सा आत्मविश्वास देखना सिद्धार्थ को काफी हद तक हैरान कर गया। झलक नीलामी में सिद्धार्थ के ठीक बराबर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या शिकन नहीं थी। इतना ही नहीं, उर्वशी खुराना गुस्से से तमतमाती हुई आकर वहीं खड़ी हो गई थी। नैना भी खुद को रोक नहीं पाई और वहां आकर खड़ी हो गई। आकांक्षा भी अब अपनी माँ का साथ देते हुए उनके पास जाकर खड़ी हो गई और झलक को देखकर बोली, झलक प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम सिद्धार्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो और तुम उसे बहुत पसंद करती हो। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो कि सिद्धार्थ ने अब तुम्हारी जगह मुझे चुन लिया है और तुम्हारा जो मकसद था हमारे परिवार से बदला लेने का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से तुम ये सब कर रही हो। लेकिन प्लीज झलक, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, इस तरह की हरकत मत करो। ये कहकर आकांक्षा ने तुरंत झलक के सामने सिद्धार्थ की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोली, वो मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता, प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट कर लो। तब झलक अपने गॉगल्स पहने हुई थी। उसने आकांक्षा की बातों पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। वहीं आकांक्षा हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि झलक की ये खामोशी आखिर किस तूफान का इशारा है। मानो वो कहना चाह रही हो कि आखिरकार ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी होस्ट उनका बीच बचाव कराते हुए बोली, मिसेस खुराना और मिसेज ओबेरॉय, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। फिर वो झलक को देखकर बोली, हेलो मिस झलक, आप यहाँ आई हैं तो क्या आपके पास यहाँ के एंट्री पासेस हैं? ये सुनकर नैना मुस्कुराकर बोली, हाँ यही हुई ना बात, अब बोलो लड़की क्या जवाब देगी। अरे होस्ट मैडम, मैं आपको कह रही हूँ ना, इसके पास यहाँ आने के कोई पासेस है ही नहीं, ये कुछ भी कर सकती है, इस लड़की को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
जैसे ही इस तरह की बात झलक ने सुनी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे सिद्धार्थ ने साफ देख लिया था। लेकिन झलक ने अभी तक एक बार भी आंख उठाकर सिद्धार्थ खुराना की ओर नहीं देखा था, और यही बात सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज क्यों कर रही है। फिलहाल झलक बड़े ही शांत भाव से वहां बैठी रही। तब होस्ट नैना के इस तरह के इल्जाम के बाद झलक को देखकर बोली, हेलो मिस झलक, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता कि आपके पास पासेस हैं या नहीं। अगर हमारी सिक्योरिटी ने आपको यहाँ तक आने दिया है तो ज़रूर कोई वजह रही होगी, आप हमें क्लियर कर दीजिए। जैसे ही होस्ट ने ये कहा, सब लोगों के चेहरे हैरानी से भर गए। वहीं आकांक्षा तुरंत आगे बढ़ते हुए ताना मारते हुए बोली, अरे होस्ट मैडम, आपको नहीं पता, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये ज़रूर यहाँ किसी साजिश के तहत आई है। इसे पता चला होगा कि यहाँ फ्री का लंच, डिनर सब कुछ मिल रहा है, ऊपर से फ्री की पब्लिसिटी भी। इसे वैसे भी लाइमलाइट में रहने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, इसीलिए यहाँ चली आई है। जैसे ही आकांक्षा ने झलक को देखते हुए ये कहा, झलक ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहीं न कहीं झलक को इस तरह शांत देखकर उर्वशी जी के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें ये खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति लग रही थी। वहीं रणविजय अब पूरी तरह असहज हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी शादी स्वीकार करके सब कुछ मैनेज कर खुराना परिवार और ओबेरॉय परिवार को एक किया था, लेकिन अब झलक की इस अचानक और रहस्यमय एंट्री से उसे लगने लगा कि कहीं एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच दूरी न आ जाए। इसीलिए वो तुरंत आगे बढ़ा और झलक को लाल आंखों से देखते हुए बोला, झलक ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम, तुम्हारी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, वाकई मुझे बहुत बुरा लगा था, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित भी था। रणविजय झलक के काफ़ी करीब आकर ये सब धीमी आवाज में कह रहा था, ताकि उसकी बातें केवल झलक ही सुन सके। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था, उलझन भी, और कहीं ना कहीं अधूरा एहसास भी। लेकिन झलक वो अब भी उतनी ही शांत बैठी थी, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता।